ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाच्याकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण की एक जो विशेष लीला है जिसके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है भगवत भक्ति हीनश्च जाति शास्त्रम जप तप अप्राणश्चैव देहश्च मंडनम लोकरंजनम। तो शास्त्र कहते हैं भगवत भक्ति ही नश्चम। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, लाइफ में कई सारी चीजें अचीव करता है, बहुत अधिक तपस्या करता है, ज्ञान अर्जन करता है, दान कर्म आदि करता है, कर्मकांड करता है, लेकिन ये सब सारी चीजें करके या बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करता है और गंगा आदि नदियों में बारंबार स्नान करता है, लेकिन ये सब करके भी यदि व्यक्ति के जो भक्ति है परम भगवान कृष्ण के प्रति नहीं है, तो उस व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार से है जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जो मृत देह है उसको यदि सजाया जाए सोने से गहने से माला से तो उसका कुछ लाभ है नहीं है। तो इसी प्रकार से यदि हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं, बहुत सोशल वर्कर समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, दानी समझते हैं, मानी समझते हैं, लेकिन हमारे पास भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो भक्ति का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में भक्ति शब्द का अनुवाद करते हैं डिवोशनल सर्विस। केवल डिवोशन नहीं, क्या है भक्ति? मतलब प्रेममयी भगवान के प्रति की गई सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। तो यदि जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, अपने जीवन में हमने सब कुछ अर्जन कर लिया, बहुत नेम फेम ग्लोरीज मनी पोजीशन ब्यूटी स्ट्रेंथ ये सारी चीजें भी आ गई हैं, लेकिन हमारे पास भगवत भक्ति नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है? यूजलेस है, व्यर्थ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमारी स्थिति उस मृत देह डेड बॉडी के समान है, जिस डेड बॉडी को ले जाते हैं चार लोग और उसको आखिरी में नए नए कपड़े पहनाते हैं, सोने के अलंकार पहनाते हैं, माला डालते हैं, तिलक आदि लगाते हैं, तो ऐसे डेड बॉडी को सजाने का कुछ लाभ नहीं है।
तो इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की भावना, जिसे भक्ति कहते हैं, वो नहीं है तो हम जीते होकर भी क्या है, मृत देह है। ये डेड बॉडी चलती है केवल नाम के लिए। जैसे कुछ लोगों को बीमारी है ना, नींद में चलते हैं, कुछ लोग होते, मैंने कई लोगों को देखा है ट्रैवल करते रहते हैं यहाँ वहां, तो कहाँ कहाँ स्टे करते हैं, तो वहां देखते हैं कि कुछ लोग नींद में चलते हैं। तो वैसे ही हमारे पास भगवत भक्ति नहीं है तो हम मृत देह है। जैसे प्रभुपाद सिंपल उदाहरण बताते हैं, आप सबने सुना होगा, एक व्यक्ति शहर में गया, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत धन प्राप्त किया और गांव में चला गया। तो गांव में जब जाना था उसे, तो एक नदी को क्रॉस करना था, नदी को पार करना था, और उस नाविक उस नदी में बैठा था। उसने कहा मुझे उस पार कराओ। तो नाविक ने कहा प्लीज आइए और बैठिए। तो जब इस व्यक्ति को बहुत घमंड था, भौतिक जगत में क्या है कि हमारे पास थोड़े से स्किल्स होते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें आ जाती हैं, तो हम अपने छोटी छोटी चीजों से घमंडित हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं, अहंकार हमें आ जाता है और हम अपनी वास्तविक पोजीशन को भूल जाते हैं। तो ये व्यक्ति भी थोड़ा शहर में गया, तो शहर में जाता है व्यक्ति तो थोड़ा बाबू बन जाता है। वो सोचता है ये विलेजर्स, गांव में रहने वाले अनपढ़ गवार कहीं के, तो उनके उसको बताने लगा कि आपको पता है इस ज्ञान के बारे में जानते हो आप, दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई है उसके बारे में जानते हो। कहते मुझे कहां मेट्रो का कुछ पता है, मैं तो मेरा काम है बस यहां से ना उस पार ले जाना। उन्होंने बोला अरे लोग चंद्रमा पे चले गए हैं उसके बारे में आपको पता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो एक ही चीज पता है, दिन भर काम करना, थोड़ा सा अर्न करना और घर में जाना। तो जैसे जैसे एक एक चीज वो बताते जा रहा था, वो कह रहा था कि आपको ये पता नहीं है तो आपकी 25% जीवन क्या है, बेकार है। जब दूसरी चीज उसने बोली तो कहा 50%, फिर कहा 75% आपका जीवन तो बर्बाद है, व्यर्थ है। उसी क्षण क्या होता है, बहुत तूफान आ जाता है और नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, नाव हिलने लगती है, पानी भरने लगता है। ये सिंपल अनपढ़ गवार व्यक्ति जो नाव चला रहा था, उसने इतने पढ़े लिखे बाबू, जिसने बड़े बड़े गैजेट्स अपने पास रखे थे, अपने नॉलेज का इतना बड़ा घमंड था, उसको पूछा ओ सिटी मैन, आप जानते हो एक चीज, आपको तैरना आता है क्या? उसने क्या कहा, मैंने लाइफ में सब नॉलेज रखा लेकिन मुझे एक चीज नहीं आती, वो क्या है, तैरना नहीं आता। तो वो अनपढ़ गवार व्यक्ति कहता है आपका कितना परसेंट जीवन बर्बाद है, 100%। तो हमारी स्थिति वैसी है, वो जो व्यक्ति है पढ़ा लिखा, जिसको सब सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, लेकिन एक चीज मिसिंग है लाइफ में, तैरना नहीं आ रहा था। तो वैसे ही हम कई सारी चीजों में एक्सपर्ट बनते हैं अपने जीवन में, लेकिन एक चीज हम मिस करते हैं, भगवान की भक्ति हमारे पास नहीं है, जो इस भौतिक जगत से हमें क्या करती है, पार कराती है, भव सागर से तैर के उस तरफ वैकुंठ जगत में ले जाती है। तो हमारी स्थिति उस व्यक्ति के समान है, इसी कारण से शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस व्यक्ति के पास ये मनुष्य बॉडी है, उस व्यक्ति ने इंक्वायरी करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी कारण से भगवान हमारे ऊपर कृपा करके क्या करते हैं, वेद पुराण स्क्रिप्चर्स देते हैं, शास्त्र देते हैं। भगवान शास्त्र देते हैं केवल जीवों पर कृपा करने के लिए, ताकि शास्त्रों के द्वारा वो अपने बारे में जान सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं और इस भौतिक जगत के बारे में जान सकते हैं। ये तीनों प्रकार का ज्ञान हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, इसी कारण से भगवान ये शास्त्र देते हैं। और दूसरी चीज, भगवान क्या करते हैं, स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मश्च, उन टेलीविजन वालों ने श्लोक फेमस कर दिया है, यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। हे भगवान, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस जगत में अवतरित होता हूं। धर्मश्च ग्लानि, ये शब्द यूज करते कृष्ण। तो धर्म की हानि होना मतलब क्या होना, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम बहुत बन गए हैं या फिर क्रिश्चियनिटी बढ़ गई है, नहीं। धर्म के आने मतलब जीव का धर्म क्या है, क्या है जीव का धर्म, सर्व करना। क्या करना, सर्व करना। हाँ, जैसे पानी का धर्म है बहना, चिली का धर्म क्या है तीखापन, मिर्च का धर्म, और शुगर का धर्म क्या है स्वीट। तो उसी प्रकार से हम जीव हैं, हम सबका धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, सेवा करना। क्या है धर्म, सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस जगत में हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो मर्जी हो, वो धर्म क्या है, सेवा करना। तो जब धर्म की हानि होना मतलब जब जीव भगवान की सेवा करना भूल जाता है तो धर्म की हानि है, वो है अधर्म। तो इसी कारण से केवल अपनी भगवत सेवा में वृद्धि करने हेतु भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं और वो शास्त्र देते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं तो क्या छोड़ के चले गए हमारे लिए, भगवत गीता। क्या, भगवत गीता। तो उसी प्रकार से भगवान ये शास्त्र देते हैं, दूसरी चीज स्वयं आते हैं, और तीसरी चीज भगवान हमें क्या देते हैं, उनके भक्त देते हैं। क्या है, डिवोटीज। कृष्ण की ये तीन गिफ्ट्स है, एक तो है शास्त्र, दूसरा उनका पर्सनल आना, तीसरा उनके भक्त। ये तीनों चीजों से कृष्ण एक ही चीज जीव से चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सूरुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये जानता है कि कृष्ण मेरे असली वेल विशर है, असली मित्र है, असली हितेशी है, वो व्यक्ति शांति जीवन में प्राप्त कर सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं आ सकता। सुख ऊपर का स्टेप है, सुख से पहले एक नीचे स्टेप क्या है, शांति है। कहते ना आजकल बड़ा अशांत चल रहा है, ऑफिस में भी अशांत हूँ, घर में आता हूँ तो भी अशांत, हम मेट्रो से जाता हूँ वो भी अशांत। तो सुख कहाँ है, तो पहले शांति चाहिए तब व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो इसी कारण से भगवान स्वयं इस जगत में आते हैं और इस जगत में आकर अपनी लीलाओं का लीलाओं प्रकट करते हैं, और उस लीलाओं को यदि कोई व्यक्ति सुनता है और उनसे शिक्षा प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान का प्रेमी बन सकता है। किसका प्रेमी बन सकता है, भगवान का। इसलिए हमें भगवान को कहा जाता है भक्त प्रेमी। भगवान किनसे प्रेम करते आदि, अपने भक्तों से। इसलिए तो पांडव और दुर्योधन दो अलग अलग पार्टीज थे। अभी भी लोग पार्टियों के चक्कर में है कि नहीं, तो असली पार्टी क्या है, कृष्णा की पार्टी पांडवों की ओर होना चाहिए। तो ऐसे कृष्णा पांडवों की ओर थे जिनके पास कुछ नहीं था, एक प्रकार से देखा जाए कौरवों के पास सब कुछ होकर भी उनको हारना पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान इस जगत में आते हैं और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसके द्वारा पूरे संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे अधिक वो प्रेम किससे करते हैं, अपने भक्तों से करते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के लिए अपने वचन को तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के ये नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वहां भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की, आज पांडवों का वध होगा या तो फिर कृष्ण को अस्त्र उठाना होगा। भीष्म किसके डिवोटी थे, कृष्ण के महान भक्त थे, तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा भगवान रखते हैं। तो देखो इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सबका प्रेम क्या है? स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। किसी भागवतम कहता है जिस पेड़ के ऊपर फ्रूट्स है तब तक पंछी उसके ऊपर बैठते हैं, फ्रूट्स खत्म पंछी वहां से गायब। जब तक गुरु से टीचर से हम शिक्षा लेना है तब तक उनसे संबंध रखते हैं, जाते आते रहते हैं, जैसे शिक्षा ले ली फिर उसके बाद फिनिश। वैसे ही है जिसके पास धन है उसके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार बिना बुलाए घर में आते रहते हैं। धन गायब हो जाए तो कोई फोन भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है, इस प्रकार की सिचुएशन है। इवन चाणक्य कहते हैं पत्नी की परीक्षा तभी हो सकती है जब आपके पास का धन खत्म हो जाए, शास्त्र कहते हैं। तो मतलब शास्त्र गाइडलाइंस है। तो वैसे ही हम इस संसार में देखते हैं कि सारे जो संबंध है स्वार्थ के ऊपर क्या है, टिके हुए हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। ये जगत में आप किसी की पूरा जीवन भर सेवा करो, जैसे माता पिता है अपने बच्चों के इतना अपना लाइफ लगाते हैं बच्चों का टेक केयर करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, बूढ़े हो जाते हैं, एक रोटी होगी तो सारी रोटी बच्चों को खिलाएंगे, खुद भूखे रहेंगे। हाँ, बारिश गिर रहा है बच्चों को ठीक जगह रखेंगे लेकिन खुद पानी में भीगेंगे। इतना सब करके भी हम फाइनली बच्चे बड़े हो जाते तो क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो मतलब इस जगत में हर समय किसी की आप बड़ी बड़ी सेवा करते हो तो और एक्सपेक्ट करता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, मेरी कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है, थोड़ा सा भी मुझे सर्व करता है, उस व्यक्ति की रक्षा मैं महान भय से कर लेता हूं। उसके जीवन में आने वाला बड़ा से बड़ा भय से मैं उसकी रक्षा करता हूं यदि वो क्या करता है, थोड़ी सी भी सेवा करता है। तो आप सोचो कितने ग्लोरियस है कृष्णा। जब महाभारत के रामायण का जो ब्रिज बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो हनुमान तो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे, बाकी बंदर तो नाच रहे थे पत्थर लाके डाल रहे थे। उस समय छोटे गिलहरी ने देखा, अरे ये सारे लोग भगवान राम की सेवा में लगे हैं और मैं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। उनकी सेवाओं को देखकर उसको इंस्पिरेशन मिला, उसको प्रेरणा मिली और वो दौड़ी। गिलहरी क्या कर सकती उसमें, लेकिन अपने कैपेसिटी के अनुसार उसने सेवा की। क्या वो लोग पहाड़ ला रहे हैं, ओके मैं क्या लाऊंगी। वो जाते थे मिट्टी में और अपने बॉडी में लोट पोट होते थे और जो भी मिट्टी के कण आते थे अपने बालों में वो लेके आते थे कैसे तो, और जहां वो पत्थर थे उसके ऊपर जाकर गिरा देते थे। तो ये हनुमान वगैरह ने देखा, रे ए हट, पाव के नीचे आ जाओगे, भाग यहां से। तो भगवान राम देख रहे थे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान देखते नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण जैसे हम थोड़ा सा उनके लिए कुछ करना शुरू करते हैं तो कृष्ण की आंखें बड़ी होने लगती हैं। कैसे होने लगती है, बड़ी। जैसे आप, आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप देखते हैं, अरे मेरे लिए क्या कर रहा है व्यक्ति। तो वैसे ही भगवान की आंखें बड़ी हो जाती है जब कोई व्यक्ति उनके लिए थोड़ा सा भी सेवा करना शुरू करता है, कोई व्यक्ति उनका नाम जप करना शुरू करता है, कृष्ण की आंखें ऐसे हो जाती है, ओ मेरे बारे में मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, हाँ मेरी सेवा कर रहा है। तो वैसे भगवान राम ने देखा, अरे वो गिलहरी सर कर रही है, तो उन्होंने हनुमान को डांटा और गिलहरी को बुलाया। बुला के भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर अपने हाथ प्रेम से सहलाए और तब से क्या हो गया, गिलहरी के ऊपर भगवान राम के उंगलियों के जो निशान है वो उसके ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम यदि भगवान की थोड़ी भी सेवा करते हैं तो कृष्ण हमेशा कृतज्ञ बने रहते हैं। विफले सेवेनु कृपण दर्जन। इस संसार में हम किसी की भी बहुत सेवा करें तो उससे हमें लाभ ही नहीं,
हानि ही होगी।
इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि आप क्या करो, थोड़ी सी भी मेरी सेवा करने का प्रयास करो, इस सेवा का लाभ परमानेंटली क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। भौतिक जगत के कार्यों का लाभ हमें परमानेंटली नहीं मिलता। तो ये भगवान की सेवा थोड़ी भी करते हैं, जैसे कार्तिक महीने की ग्लोरीज आती है कि कार्तिक महीना ये कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है। शास्त्र कहते हैं वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिया। वनस्पतियों में श्रेष्ठ कुछ है तो वो कौन है, तुलसी है। और मासों में जितने भी महीने हैं उसमें श्रेष्ठ महीना कोई है तो वो कार्तिक है। एकादशी तिथि नाम च, जितनी भी तिथियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ तिथि कौन सी है, एकादशी है। आज एकादशी है। वैसे ही भगवान कहते हैं न कार्तिक समो मास, वो कहते हैं कि कार्तिक के समान महीना कुछ और नहीं है। जैसे दिवाली आती है ना, सेल शुरू हो जाता है कि नहीं, वैसे ही भगवत भक्ति को प्राप्त करने का ये क्या है, सेल है, जो कार्तिक में शुरू होता है। और कोई भी व्यक्ति कार्तिक में भगवान के एक नामों को उच्चारण करता है वो हजारों नामों के समान है। भगवान की थोड़ी सी सेवा करता है कृष्ण उसको बहुत बड़े रूप में देखते हैं। जैसे पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक टेम्पल में एक व्यक्ति आकर पुजारी वहां दिया जलाया करता था। सुबह से जलाया और संध्या हो गई थी तो दिया बिल्कुल बुझने वाला था। तो उस मंदिर में चूहे भी थे, चूहे और दूसरे क्या होते हैं, छोटा सा क्या होता है, चुहिया, हाँ चुहिया, मैं भूल गया वर्ड। जो चुहिया है वो भी घूम रहे थे, चुहिया के ना तेल पीते थे, घी खाते थे। तो जब ये दिया जलाया जा रहा था और बहुत थोड़ा सा भी बुझने वाला था तो एक चुहिया वहां से आ गई, कहां से निकल के बाहर, और वो गई खाने। खाने क्या गए, उसके मूछे होती है थोड़ी बहुत हल्की से बाल होते हैं, वो जैसे उस घी को खाने लगी तो उससे उसके छूने मात्र से वो जो दिया बुझने वाला था अचानक तेज हो गया। और जैसे तेज हो गया इसका मुंह वगैरह जल गया, जल के वो गिर गई। और वो अभी कष्ट होता है तो घूमता रहता है ना कोई प्राणी, वो भगवान का जो मंदिर था मैं उसके ऐसे ऐसे घूम रहे थे तो भगवान ने देखा इतनी बड़ी सेवा मेरे लिए की है। क्या सेवा की, दो सेवा, एक तो जो दिया बुझने वाला था उसने दीपदान किया। क्या किया, दीपदान। भगवान इस प्रकार से देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था अपने प्रेमिका के लिए फूल लेकर, जाते जाते वो नाव में जा रहा था, हवा आ गई, नाव इधर उधर ऐसी हो गई तो हाथ से गिर गया, फूल क्या हो गया, प्रेमिका के लिए ले जा रहा है गिर गया। उसने सोचा चलो गिर ही गया तो गिर गया, तो उसने कुछ मंत्र सुने भी थे, मंदिर जाता था। हाँ, वो कहे तो उसने कहा कृष्ण अर्पणस्तु, कि कृष्ण को अर्पण करता हूं ये फूल। लेकिन किसके लिए जा रहा था, प्रेमिका के लिए, लेकिन भगवान ने वो फूल भी क्या किया, स्वीकार किया। इस प्रकार से कृष्ण थोड़ा सा भी हम करते हैं सर तो उसको स्वीकार करते हैं। वैसे वो चुहिया की दो चीजों को भगवान ने देखा कि इसने तो कार्तिक का महीना था और दीप ऑफर किया मुझे, भगवान बहुत ग्रेटफुल हो गए। और दूसरी चीज क्या देखी उन्होंने कि इसने मेरी इतनी परिक्रमाएं की, कार्तिक में चार परिक्रमा करनी चाहिए टेम्पल की, तो भगवान ने कहा ये तो निश्चित मेरे धाम को प्राप्त करेगी। पद्म पुराण वर्णन करता है कि उसकी ये दो छोटी सी सेवाओं से कृष्ण ने उसको अपना बना लिया। भगवान अपने धाम में, उसने शरीर छोड़ने के बाद अपने धाम में निवास देते हैं, क्योंकि शरीर तो परमानेंट रहेगा नहीं हमारे साथ, हम सब तो काल रूपी सर्प के मुंह में है। मैं छोटा था तो जब जंगल में हम जाते थे तो वहां एक सांप को आप देख, कई सांपों को देखा, एक सांप एक मेंढक को खा रहा था। कैसे खा रहा था, सांप को ऐसे नहीं कि चबाते चबाते खाता है, निगलता है, उसने मेंढक को आधा निगल लिया था। और हम ध्यान से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, तो आधा निकल लिया फिर भी वो मेंढक अपनी जीभ बाहर निकाल कर इधर उधर घुमा रहा है कि कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाए, क्या मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, मतलब आधा उसके अंदर है, वैसी स्थिति हमारी है, आधा लाइफ चला गया है। अभी हम सब की एज क्या है, कोई 40 का है, कोई 45 का है, कोई 30 का है, 35 का है, 50 का है ना, सब लोग कहाँ है, सांप के मुंह में आधे चले गए हैं, फिर भी ये आशा है कि अभी भी सुखी हुआ जा सकता है, अभी भी मैं क्या होऊंगा, राजा बनूंगा, मैं रानी बनूंगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन पता नहीं कि आधा आधा सर्प ने खा लिया है, अभी थोड़ा सा आयु बचा है, उसमें भी बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा किसी को अच्छा लगता है? इस संसार में बूढ़े व्यक्ति हो जाता है, उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, तो हम सब क्लोज है, मृत्यु के क्लोज है, तो जो भी दिन बचे हैं उसका हमें यूज करना चाहिए। किसके लिए? भक्त बनने के लिए। किस चीज के लिए? भक्त बनने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान थोड़ी सी सेवा से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हाँ, शास्त्र कहते हैं कि ये जो कार्तिक महीना है, जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवत भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और इस महीने को विशेष रूप से कहा गया है दामोदर मास। क्या कहा गया है? दामोदर मास, आप सबने सुना होगा। दामोदर मास ये भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि इस महीने में भगवान को प्रेम रूपी रस्सी से किसने बांधा था? माता यशोदा ने बांधा था। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में। भागवतम वो ग्रंथ है जिसमें भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम का संबंध है उसका वर्णन है। जहां भगवत गीता खत्म होती है, भगवत गीता क्या कहती है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण अनाउंस करते जोर से, अरे अर्जुन सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरे शरण ग्रहण करो। शरण ग्रहण करने के लिए कहते, लेकिन उसके आगे क्या? तो फिर क्या शुरू होता है? भागवतम। भागवतम में कृष्ण कहते शरण ग्रहण करने के बाद क्या करो? सेवा करो। तो भक्त और भगवान के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान है उसको भक्ति कहते हैं। किसको भक्ति कहते हैं? भगवान और भक्त में जो प्रेम की सेवा का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? भक्ति। तो इसलिए भगवान की सेवा प्रेममय करना वो सीखना होगा। तो ऐसे भागवतम में ये वर्णन आता है जिसको शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं और राजा परीक्षित सुनने के लिए तत्पर होते हैं। तो वो छोटी सी लीला, हमारे पास 10 मिनट है, मैं वर्णन करता हूं, शायद ये घड़ी 10-15 मिनट है, तो मैं वो जो लीला है संक्षिप्त में आपको बताता हूं। तो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज का वर्णन आता है जिनकी मृत्यु बहुत नजदीक थी, 7 दिनों में। कितने दिनों में? हमें पता नहीं कि 7 मिनट में, 7 घंटे में हमारी मृत्यु होगी, लेकिन हमें लगता है कि बहुत करोड़ों साल में जीवित रहूंगा। हाँ, जैसे क्वीन विक्टोरिया थी ना, रानी इंग्लैंड की, तो रात में जब सोए तो सुबह उसकी सेविका उठाने गई तो देखा वो बेड में मरी हुई है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि कल का सूर्योदय मैं देखूंगा, कल मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा। नहीं, कृष्ण हमारी आंखें खोल के रखेंगे तो ही हम देख सकते हैं। तो परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में मृत्यु होने वाला था, उनको शाप मिला था तक्षक, जिसको पंख है ऐसा सांप उड़ने वाला, वो आकर उनको दंश करने वाला था। तो ऐसे उनकी मृत्यु नजदीक आई तो उन्होंने पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु बहुत नजदीक है, मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो कितना अच्छा प्रश्न है ना, हम प्रश्न उठपटांग पूछते रहते हैं, लेकिन ये प्रश्न, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड है, जितने भी प्रश्न है, कि जो भी व्यक्ति मरणशील है, मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में कीर्तन करना चाहिए, किसके नामों का जप करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा। भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जब ऐसे पूछा तो शुकदेव गोस्वामी उनको वर्णन करते हैं कृष्ण लीला का। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए हैं और गोकुल महावन में जाकर निवास किया उन्होंने, तो भगवान महावन में 3 साल तक थे वहां गोकुल में। तो उस समय भगवान की एक विशेष लीला घटित हुई थी और वो कौन सी लीला थी? ये उखल दामोदर बंधन लीला। तो उस समय वो वर्णन करते हुए कहते हैं शुकदेव गोस्वामी कि भगवान ये जो कार्तिक महीना है इसमें सर्वाधिक लीलाएं की हैं। भगवान की जो प्रमुख प्रमुख लीलाएं हैं वो सारी कार्तिक में हुई है। दीपावली के दिन ये दामोदर लीला कौन से दिन हुए थे? दीपावली के दिन ही माता यशोदा ने उनको बांधा था और दूसरे दिन क्या हुआ? गोवर्धन लीला हुई। तो इस दामोदर ये कार्तिक महीने में कृष्ण की कई सारी लीलाएं हुई। तो एक समय जब माता यशोदा ने सोचा कि मेरा ये जो बालक कृष्ण है वो मेरे घर का माखन नहीं खाता है, हमेशा दूसरों के घर में जाकर चोरी करता है, तो उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ। तो उस दिन उन्होंने सोचा कि मैं आज क्या करूंगी, स्वयं ही मक्खन बनाऊंगी। इसलिए माता यशोदा ने उनके पास 9 लाख गायें थी, उनमें से कुछ गायें ऐसी थी जो कलरफुल दूध देती थी। ऐसे नहीं कि मदर डेयरी से वो फ्लेवर्ड कलर्ड मिल्क मिलता है ना, लोग आके बोतल से पीते हैं, वैसे नहीं। नंद महाराज के पास ऐसे गायें थी जो सुगंधित और कलरफुल मिल्क देती थी। तो ऐसे गायों को चूज किया माता यशोदा ने और स्वयं ही दूध निकाला उसने। क्यों ये सब किया, क्या कारण है, आज उसने सोचा कि मैं खुद बनाऊंगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्योंकि माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वाधिक था। किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद यशोदा ही कृष्ण की माता क्यों है, दूसरी कोई क्यों कृष्ण की माता नहीं है? तो प्रभुपाद ने कहा यशोदा इसलिए कृष्ण की माता है क्योंकि वो कृष्ण की सेवा की सबसे अधिक चिंता करती है। क्या करती है? कृष्ण की सेवा की सर्वाधिक चिंता वो अपने सर में लेती है और यही एक क्वालिफिकेशन है कृष्ण की माता बनने का। यह भगवान का भक्त का मतलब ही है जिसको भगवत सेवा की क्या हो, चिंता। अभी हमें अपने परिवार आदि की चिंता रहती कि नहीं, लेकिन पांडव आदि किसकी चिंता करते थे? कृष्ण की। तो माता यशोदा ने सोचा कि मैं खुद ही बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करती थी। तो जिस व्यक्ति को आप सर्वाधिक प्रेम करते हो उसके लिए आप क्या करते हो? खुद कार्य करते हो, एक प्रेम का लक्षण है। आजकल ऐसे नहीं है, जैसे सोचो कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, वो कहेगी ऑफिस से आया हूं, ठीक है फ्रिज में पड़ा है सुबह का, आलो सो जाओ, या फिर वो नौकरानी बना के खिलाएगी आपको, है ना, ये मॉडर्न कल्चर है। लेकिन वहां क्या था, कृष्ण मेरे पुत्र है, कृष्ण के सर्वाधिक प्रेम है उनका। उन्होंने कहा कि दासी बनाएगी नहीं, मेड सर्वेंट अलाउड नहीं है, मैं स्वयं बनाऊंगी, एक प्रेम का लक्षण है। इसलिए उन्होंने स्वयं मक्खन बनाना शुरू किया। अब दूसरी चीज क्या उन्होंने सोची, क्योंकि मैं बनाऊंगी तो मेरे हाथ से खाएगा तो दूसरों के घर में जाकर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि यशोदा बेस्ट कुक थी, यशोदा माता क्या थे, बेस्ट कुक। और तीसरी चीज उन्होंने सोची कि क्योंकि मैं बनाकर भगवान नारायण को अर्पित करूंगी ताकि मेरा बालक खाएगा तो उसकी हेल्थ हमेशा के लिए परफेक्ट या बेटर होगी। तो ये जब सोचा तो उन्होंने स्वयं ही अपना कार्य करने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण को उन्होंने सुलाया और सुलाकर अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गए और जाकर अपने क्लोथ्स टाइट कर दिए और फिर वो मंथन करने लगी, दही का मंथन करने लगी। और जब वो मंथन कर रहे थे तो साथ ही साथ उस मंथन में
ऐसे नहीं थे कि वो बस चुपचाप होकर मंथन कर रहे हैं, नहीं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये नहीं कि सारी चीजों को त्याग करो और निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, निठल्ले होकर। कई बार लोग कहते ना, अरे ये लोग साधु बन गए, इनको कुछ काम धंधा तो है नहीं, हाँ कुछ काम करना करता है, करना तो नहीं पड़ेगा, इसलिए चलो लाल कपड़े पहन लो, शिखा रखो और जस्ट सिंपल लाइफ। नहीं, हाँ भक्ति का मतलब है सुपर एक्टिव व्यक्ति। हाँ क्या? एक्टिव। अर्जुन भी वही कह सोच रहा था, अर्जुन ने कहा कहाँ फसलों में युद्ध करके, मैं ना जंगल जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जंगल में बहुत पशु हैं, तुम और एक पशु मत जाओ वहां, हाँ यहाँ कार्य करो। भक्ति का मतलब है कार्य करो, लेकिन कैसे? माम अनुस्मर युद्धेच, ये आर्ट है। लोग कहते ना कर्म ही पूजा है, शास्त्र कहते गदा भी कर्म करता है, लेकिन भगवान कहते कर्म करो लेकिन कैसे करो वो सीखो। तो वो कला क्या है? कृष्ण कहते अर्जुन युद्ध करो लेकिन माम अनुस्मर युद्धेच, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, वो भगवत भक्ति है। तो वैसे ही ये दही का मंथन कर रही है माता यशोदा, लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका शरीर, ये तीनों चीजें कृष्ण की सेवा में लगी है। भक्ति में हमें अपने तीनों चीजें भगवान की सेवा में लगानी होगी, अपने मन को भी, अपने बुद्धि को भी और अपने शरीर को भी। तो मन के द्वारा वो भगवान की जो लीलाएं हैं, कृष्ण के नाम है, उनका वो उच्चारण कर रही थी। बुद्धि के द्वारा वो सोच रही थी कि कैसे कैसे मैं मक्खन बनाऊं, क्या क्या चीजें बनाऊं, कैसे स्वादिष्ट होनी चाहिए जिसको कृष्ण ग्रहण करे। और शरीर से वो क्या कर रहे थे? मंथन कर रहे थे। तो मतलब भगवत भक्ति बहुत सरल है। हम अपने सारे कार्यों के साथ भगवान का स्मरण, नाम, श्रवण आदि को ऐड करते हैं तो हम सरलता से भगवत भक्त बन सकते हैं। तो माता यशोदा जब ये मंथन कर रहे थे तो कृष्ण वहां उठे, और कृष्ण उठे तो भगवान ने देखा, अरे मेरी माता जल्दी उठ गई। हाँ, हमेशा पहले कृष्ण को उठा के उठते थे, और सुला सोने से पहले भगवान को कृष्ण कथा सुना के सुलाती थी, जैसे लोरी कहते हैं ना, लोरी सुनाती है। तो इस प्रकार से जब माता यशोदा ने किया और वो मंथन कर रही थी वहां, तो कृष्ण वहां जाते हैं और वो कहते कि ओ माता मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खिलाओ। तो माता यशोदा देखती है, वो सारा कार्य छोड़ देती है, कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए लगती है। जैसे कृष्ण को स्तनपान करा रहे थे तो उस समय माता यशोदा ने देखा कि चूल्हे के ऊपर दूध मैंने रखा है बॉइल होने के लिए। हाँ, किसके लिए था वो दूध? कृष्ण के लिए था। वो दूध उबल के बाहर जा रहा था, वो सोच रहा था कि क्या मेरे जीवन का लाभ। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु कॉन्शियस होती है, चेतन होती है, वहां हर वस्तु बोलती है, चलती है। जैसे माता यशोदा को राइस बनाना होता था, आजकल की स्त्रियां कुकर में लगा के राइस बनाती है, सीटी की आवाज हो गई तो समझो राइस रेडी। लेकिन माता यशोदा का क्या था, या तो फिर गांव में क्या कुकर नहीं है तो माताएं बार बार जाके ढक्कन खोल के उसको चेक करती है उंगलियों से, अभी पक गया कि नहीं, पक गया कि नहीं। तो वृंदावन में क्या था, यशोदा माता राइस को रख देती थी चूल्हे पर और बाहर जाती थी अपने बातें करने के लिए, और वहां से वो पूछ लेते थे, अरे राइस पक गया हो क्या? राइस कहता था आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, तो फिर उसको उठा के साइड में रखते थे। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चलती है, बोलती है। हाँ, तो यहाँ वो दूध भी सोच रहा था कि मेरे जीवन का क्या लाभ, वो सारा दूध माता यशोदा का ही पी रहा है, मुझे भी तो कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे बॉइल करने के लिए रखा है, किसके लिए? कृष्ण के लिए, मेरा यूज नहीं होगा तो उचित नहीं है। तो वो आत्महत्या कर रहा था, क्या कर रहा था? अरे सेवा नहीं मिली चलो आत्महत्या करते हैं, वो गिर रहा था। तो माता यशोदा कृष्ण को साइड में रख के दौड़ गई और उनको दूध को बचाया। तो यहाँ कृष्ण को लगा कि माँ सोचती क्या है अपने आप को, मुझे दूध पिलाना छोड़कर वो वहां भाग गया अपने काम के लिए। तो उन्होंने मिट्टी से वो जो घड़ा है तोड़ दिया, कृष्ण भाग जाते हैं, यशोदा माता आके देखती है तो कृष्ण नहीं है वहां, लेकिन देखते कि जिस दही में उनके पांव पड़े थे, जहां जहां वो चल के गए थे वहां वहां चिन्ह नजर आए। एक स्थान में गई, जा देखा कृष्ण क्या कर रहे थे, एक उखल के ऊपर खड़े होकर ऊपर छीके से दही दूध मक्खन आदि लेकर खा रहे थे, बंदरों को बांट रहे थे। माता यशोदा को गुस्सा आया, छड़ी लेकर दौड़ी। कृष्ण ने जैसे देखा छड़ी, कृष्ण ने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम क्या देखा था, छड़ी। पहले कभी छड़ी नहीं देखा था। छड़ी जब देखा तो कृष्ण डर गए, कांपने लगे। अब देखो उनके भय से सूर्य रोज उदित होता है, उनके भय से हवा चलती है, उनके भय से समंदर अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। लेकिन ऐसे भगवान किससे डर रहे हैं, यशोदा माता की छड़ी से। तो यशोदा माता फिर जब जैसे वो छड़ी दिखाती है, कृष्ण भागने लगते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, माता यशोदा दौड़ती है उनको पकड़ने के लिए। तो उनके पीछे उन्होंने फ्लावर्स लगाए थे बालों में, वो फ्लावर्स गिर जाते हैं उनके चरणों में उनकी वंदना करने के लिए। अरे कितनी हमें ग्लोरियस माँ है, कृष्ण को पकड़ने के लिए जा रही है। तो ऐसे जाके जैसे कृष्ण को पकड़ते हैं तो उसको कहते हैं अभी मैं तुम्हें दंडित करूंगी, तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम है, कृष्ण का नाम क्या है, पुरुषोत्तम, लेकिन तुम ऐसे हरकतें करोगे चोरी ना? तो तुम पुरुष अधम कहलाओगे। क्या कहलाओगे, पुरुषों में अधम। इस प्रकार से ये बहुत विस्तार पूर्वक लीला है। तो कृष्ण को वो लेती है और रस्सियों से तुम्हें बांध के रखती है, तो उनको बांधना चाहती है। तो सारी रस्सियां ट्राई करती है घर की, तो पड़ोसियां भी रस्सियां लेकर आते हैं, लेकिन इन सारी रस्सियों से बांधकर प्रयास करते हुए भी वो देखती है कि मैं उसे बांध नहीं पा रही हूँ। और दो चीजें उन्होंने देखी, दो अमेजिंग चीजें। कहते इसी बच्चे को रोज मैं स्नान कराती हूँ तो अपने एक हाथ में उसकी कमर पकड़ती हूँ, साइज इतनी है, लेकिन आज एक कमर साइज बढ़ नहीं रही है लेकिन रस्सियां बहुत लग रही है। और दूसरी चीज क्या कि ये रस्सियां हमेशा दो उंगली छोटी है। तो माता यशोदा को ये आश्चर्य लगा। तो भगवान माता यशोदा के प्रेममयी रज्जु से बंध जाते हैं, भौतिक रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। तो आचार्य वैष्णवगण कहते कि ये दो चीजें क्या थी, दो उंगलियां, एक है प्रयास और दूसरा क्या है, भगवान की कृपा। तो हमें प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है, कीर्तन अटेंड करें, लेक्चर्स अटेंड करें, पढ़े, जप करें, सेवा करें, ये प्रयास करते रहना है। जब भगवान देखते कि ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है मुझे जानने का, मुझे समझने का, मेरी सेवा करने का, तो भगवान अपनी कृपा देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। जब माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही थी, पसीने छूट रहे थे, रस्सियां ला रही थी, चिल्ला रही थी, फिर देखा बहुत प्रयास कर रही है, भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी कृपा करता हूं। तो उन्होंने कृपा की तो उनको बांध सकी। तो इस प्रकार से हम भी भगवान को बांध सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रेममयी सेवा की भावना चाहिए। और वो प्रेममयी सेवा की भावना कैसे आती है, जब हम भक्तों के संगति में आते हैं, इस प्रकार से भगवान के बारे में अटेंटिवली सुनते हैं गंभीरता से और अपने जीवन में डालते हैं और ग्रंथों को पढ़ते हैं और नियमित रूप से क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं भक्तों के सन में आकर, तो वो प्रेममयी भावना हमारे हृदय में विकसित होती है और जिसके द्वारा हम एक दिन कृष्ण को बांधने में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए कार्तिक बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है जिसमें चार पांच चीजें करनी चाहिए। एक है जल्दी सुबह उठना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सुबह उठना चाहिए, रोज अर्ली मॉर्निंग स्नान करना चाहिए। तीसरी चीज हरि नाम का जप करने का प्रयास करना चाहिए, एक नाम हजार नामों के समान है। कार्तिक में ये होलसेल है जिसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी चीज तुलसी की सेवा करनी चाहिए, कार्तिक में तुलसी की अधिक से अधिक सेवा करो, तुलसी गिफ्ट भी करो आप किसी को। और रोज भगवान दामोदर यशोदा दामोदर को क्या करो, दीप अर्पित करो। इसलिए शास्त्र कहते हैं दामोदरम अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम, नित्यम दामोदर आकर्षि पठेन सत्य व्रत
कहते हैं पद्म पुराण दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्र। ये दामोदर अष्टकम नाम ये जो स्तोत्र है ये कोई व्यक्ति रोज चांट करता है अटेंटिवली गंभीरता से और दामोदर भगवान को रोज दीप अर्पित करता है तो वो व्यक्ति भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है भगवान उसके ऊपर उसके ओर खींचे चले आते हैं केवल ये सिंपल चीज करने से। तो इसलिए दामोदर अष्टकम जहां यहाँ गाते हैं मंदिर में उसको चांट गाइए घर में पढ़ सकते हैं और रोज दीप परिवार के साथ आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की सेवा कीजिए तुलसी को जल डालिए उसमें वो मंजरिया नहीं आनी चाहिए केयर करिए अच्छी खासी तुलसी हो तुलसी किसी को गिफ्ट करो इस महीने में तुलसी का जन्म भी है इस महीने में प्रकट होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए थोड़ी तपस्या है स्नान कीजिए और क्या कीजिए घर में मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 और हो सके तो मंदिर आइए अधिक से अधिक भक्तों का संग लाभ कर सकते हैं श्रवण कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।